اللہ الرحمن الرحیم، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان نیکیاں سمیٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے دوران مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں، مختلف مہمان ہمارے پاس آتے ہیں جن سے ہم ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے مہمان ہوں گے معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں جو مختلف سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے کیا جوابات ان کے پاس ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو نشریات ٹی وی چینلز پیش کرتے ہیں اس پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آج کے پروگرام میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب، بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے وقت نکالا، آپ ملیشیا میں اس وقت موجود ہیں، اسکائپ کے ذریعے ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک اور عید کا چاند کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک اختلاف رہا ہے، کچھ لوگ پہلے اعلان کر دیتے ہیں، کچھ بعد میں اعلان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو رویت حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جاتا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اس کے باوجود پاکستان میں اتفاق رائے رمضان کے چاند یا عید الفطر کے چاند کے حوالے سے نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں ان کو مذہبی چیزیں سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ چاند کا مسئلہ بھی، قمری مہینہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، اس مسئلے کا مذہب سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے سے انسانی علم اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر کوئی چاند نہیں دیکھتا، کیونکہ قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھنے ہی کا ایک طریقہ پرانے زمانے میں تھا۔ جدید سائنس تب اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ آپ کو اب 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتی ہے، اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے اب ہم نماز سائے کے لیے کوئی چھڑی گاڑ کر نہیں پڑھتے، ہم گھڑی پر دیکھ لیتے ہیں اور وقت کے لحاظ سے کمرے میں ہوں باہر ہوں سورج کو دیکھے بغیر سائے کو دیکھے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سائنسدانوں کو اور علم فلکیات کے ماہرین کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے لیے مہینے کا تعین کر دیتے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سوائے قدامت پسندی کے اور کچھ نہیں، ایک غیر مذہبی مسئلے کو ہم نے مذہبی مسئلہ بنا لیا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریاست کا نظم ہے اس کی دینی حیثیت ہمارے علماء عام طور پر تسلیم نہیں کرتے، دینی حیثیت یہ ہے کہ وہ معاملات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان میں ریاست اگر کوئی ادارہ بنا دے تو سب لوگوں کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، حنفی فقہ میں یہ بات طے ہے کہ اگر پوری مسلمان امت میں ایک حکومت قائم ہو اور کسی ایک جگہ سے چاند کا اعلان کر دیا جائے تو ساری مسلمان امت میں لوگ اس دن عید کرنے کے پابند ہیں، یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے استدلال یہی ہے، آرگومنٹ یہی ہے کہ جب نظم ریاست قائم ہو جائے تو خواہ وہ پوری امت کی سطح پر ہو یا مختلف ممالک کی سطح پر ہو، اس کے فیصلے پر مجھے بھی سر تسلیم خم کرنا ہے، آپ کو بھی۔
دین کا حکم، خواہ وہ ریاست اسلامی ریاست ہو یا نہ ہو،
مسلمانوں کی ریاست جیسی ہوا کرتی ہے ویسی ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خلافتیں تھیں، جیسے خلافت بنو عباس ہے، خلافت بنو امیہ ہے، اگر آپ اسلام کے کڑے معیار پر دیکھیں تو ان میں سے بھی شاید کوئی پوری نہ اترے، کیا مغلیہ سلطنت اس کا کوئی بہت اچھا نمونہ ہوگی؟ تو اس میں اصول کسی ریاست کے مسلمان ہونے کا ہے، یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست ہے تو اجتماعی معاملات وہ انجام دے گی، اس کے فیصلے کو ہم مانیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اگر قتل کا مقدمہ ہو جائے تو آپ اسی ریاست کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، اس سے بغاوت تو نہیں کرتے، یہی معاملہ سب چیزوں کا ہے۔
لیکن غامدی صاحب، جو خلافت کا قیام ہے یا خلافت کا جو نظام ہے، खिलाफत कायम करते हुए जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बाद तक, क्या वही तरीक़ाकार नहीं रहेगा कि खलीफा कैसा चुना जाएगा?
तो वो तरीका हमारी किताब में तय है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद ने वाज तौर पर बता दिया है कि मुसलमानों का इज्तमाही नज़्म उनकी राय पर मबनी होगा, वो खालिस जमहूरी रियासत होगी। मुसलमान जब भी अपना कोई नज़्म बनाएंगे उसमें हुक्मरान का फैसला वहाँ के मुसलमान अवाम करेंगे। कुरान मजीद ने ये ऐलान कर दिया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तमाई उनकी राय और उनके मशवरे से वजूद में आएगा, उसकी बुनियाद पर कायम रहेगा। ये ना बंदूक के ज़ोर से वजूद में आएगा, ना किसी ख़ास तबके की हाकमियत इसमें कायम की जाएगी, ये लोगों की राय से वजूद में आएगा।
तो गांधी साहब, इस लिहाज से पाकिस्तान की हुकूमत को हम क्या समझें, ये खिलाफत है, इस्लामी हुकूमत है या मुसलमानों की हुकूमत है?
ये मुसलमानों की हुकूमत है और सब हुकूमतें मुसलमानों ही की होती हैं। बनू अब्बास की हुकूमत भी मुसलमानों की थी, बनू उमैया की हुकूमत भी मुसलमानों की थी। मिसाली हुकूमत एक और चीज़ है और मुसलमानों की हुकूमत पाकिस्तान में भी है। दुनिया के इस वक्त 50 से ज़्यादा ममालिक में मुसलमानों की हुकूमतें हैं, इनमें अच्छी भी हैं, इनमें काबिल एतराज़ इकदाम करने वाले लोग भी हैं, इनमें ऐसे हुक्मरान भी हैं कि जिनसे हम इख्तलाफ करते हैं, जिन पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये बहरहाल मुसलमानों की हुकूमतें हैं। इनके तहत जंग होगी, इनके तहत हज किया जाएगा, इनके तहत दीनी तमाम अहकाम होंगे। मैं एतराज़ कर सकता हूँ सऊदी हुकूमत पर भी, बादशाहत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन क्या हम हज करना बंद कर देंगे उसके तहत? यानी तमाम मामलात उसी तरह होंगे जिस तरह के मुसलमानों की हुकूमत में होते हैं। अगर उसमें कोई गलती है या वो मिसाली नहीं है तो उसकी इसलाह की जाएगी।
लेकिन गांधी साहब, फिर जो लोग खिलाफत के क्याम की जद्दोजहद की बात करते हैं, दोबारा से खिलाफत कायम करने की बात करते हैं, और जो हदीस में आता है कि एक बार फिर खिलाफत मिनाजुल नबुव्वा कायम होगी, फिर उसका तसव्वुर कहाँ रह जाएगा?
ये खिलाफत की कोई इस्तलाह सिरे से कोई दीनी इस्तलाह ही नहीं, ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। ये जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में पेशीनगोई फरमाई थी कि मेरे बाद जो हुकूमत कायम होगी, वहाँ खिलाफत का लफ्ज़ हुकूमत के मानी में है, जो हुकूमत कायम होगी वह अला मिनहाज नबुव्वा होगी, यानी ऐसे लोग हुक्मरान होंगे जो उसी तरह हुकूमत करेंगे जैसे अल्लाह के नबी हुकूमत करते रहे हैं। आपकी ये पेशीनगोई हरफ बरफ पूरी हुई, आपने फरमाया कि कुछ देर के बाद अल्लाह ताला इसका दोबारा रुख दिखाएगा, वो दुनिया ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ की सूरत में देख लिया। इस वजह से जो बात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी वो हरफ बहरफ पूरी हो चुकी। अब उसके बाद किस चीज़ का इंतज़ार है? अब मुसलमानों की हुकूमतें हैं, ये अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी, और अगर ये अपनी इसलाह करना चाहेंगी और हम भी कोशिश करेंगे तो अपने आप को बहुत बेहतर और मिसाली हुकूमतें भी बना सकती हैं।
तो फिर खिलाफत उस्मानिया क्या थी गांधी साहब? खिलाफत उस्मानिया खिलाफत नहीं थी?
आपके इलम में है कि खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में ईरान में सफवी सल्तनत कायम थी और ईरान भी बहरहाल मुसलमानों ही का हिस्सा था। मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान में कई सौ बरस तक कायम रही। इसी तरीके से जो मशरक़ बईद के ममालिक हैं, जैसे मैं इस वक्त मलेशिया में बैठा हुआ हूँ, इंडोनेशिया, इन पर अपनी अपनी हुकूमतें कायम रहीं। तो इस वजह से यह बिल्कुल एक मिथ है जो मुसलमानों ने बना रखी है। इस्लाम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं आयत की गई कि सब मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए। हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ताल्लुक तारीखी अवामिल से है, इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है। मज़हबी हुक्म सिर्फ ये है कि मुसलमानों का नज़्म इज्तमाई या उनकी हुकूमत जहाँ भी कायम हो उसको और उसके हुक्मरानों को अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी करनी चाहिए।
तो गांधी साहब, जो खिलाफत के क्याम के लिए तहरीकें चलाई जा रही हैं, इस तरफ बुलाया जा रहा है, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे?
मैं इनको बिल्कुल बेमानी समझता हूँ। मेरे ख्याल में ये तारीखी अमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है लोग, और एक ऐसी चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं कि जो तारीख में अपना किरदार अदा करके ख़त्म हो चुकी है। मेरे नज़दीक सही बात वो है जो अल्लामा इकबाल ने बताने की कोशिश की थी कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि किसी वक्त कोई यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट्स या यूनाइटेड मुस्लिम स्टेट्स कायम हो जाए, रियासत है मुत्तहिदा इस्लामिया, और ये भी तारीखी अमल से होगी, ये कोई मज़हब का मसला नहीं है। यानी जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि यूरोपी यूनियन मुत्तहिद हो रही है, अच्छी बात है, मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी एक हुकूमत कायम कर ले, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी, आपको भी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई मज़हब का हुक्म है? हरगिज़ नहीं। मजहब में इसकी पूरी इजाजत है कि आप एक हुकूमत कायम करें, आप 10 कायम करें। आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ एक सदी बाद अंदलुस में मुसलमानों की अलग खिलाफत कायम हो गई थी और वो 550 साल तक कायम रही। आप आज उस पर फख्र करते हैं, तो इस वजह से ये पहले दिन से ऐसा ही हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या ख्वाब देख रहे हैं, इस वक्त इसके बिल्कुल हालात नहीं है। हाँ, मुझे और आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमानों की कोई मुत्तहिदा रियासत किसी वक्त वजूद में आ जाए। इसको मजहबी मसला बनाकर लोगों को जज्बाती करने की कोई वजह नहीं।
गांधी साहब, अगर पाकिस्तान की हम बात करें, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर भी मौलाना मौदूदी ने भी इस्लामी हुकूमत के क्याम की जद्दोजहद की, और कहा जाता है कि पाकिस्तान को भी एक इस्लामी हुकूमत की तरफ जो है कोशिशें की जाती रही, कोशिशें की जा रही हैं। अगर पाकिस्तान में हुकूमत ऑलरेडी इस्लामी हुकूमत है, तो फिर ये इस्लामी हुकूमत का तस्वर क्यों पेश किया गया?
ये पाकिस्तान में, ये आपको मालूम है कि बहुत सी बातें पाकिस्तान के आईन में तय हो चुकी हैं। पाकिस्तान में बहुत से कवानीन मजहब के नाम पर इस वक्त नाफिज हैं। पाकिस्तान में एक आपने वफाकी शरई अदालत बना रखी है, जिसको आपने इख्तियार दिया है कि अगर कोई भी शख्स जाकर वहाँ किसी कानून के बारे में ये कहे कि ये शरीयत के मुनाफी है, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान में तो ये सब इदारे वजूद में आ चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम इस हुकूमत को बेहतर बनाएं। मसलन इस वक्त जो इस्लामी कवानीन जिनको कहा जाता है वो हमारे मुल्क में नाफिज है, मुझे उनमें से बहुत सो पर एतराज़ है। मेरे नज़दीक वो इस्लाम की सही ताबीर पर मबनी नहीं है, तो क्या इसकी बुनियाद पर मैं इसको एक मुसलमान या एक इस्लामी हुकूमत मानने से इनकार कर दूँ? ये मुसलमानों की हुकूमत है, ये बहुत अच्छी हुकूमत है, हमें इसको और अच्छा बनाना है और इसमें जो कवानीन में गलतियाँ उनको और बेहतर करना है। शरीयत की जो चीज़ें अभी नहीं मानी जा रही उनकी वजाहत करनी है, उस पर लोगों को कायल करना है। जैसे जैसे लोगों का जहन मानेगा वो कबूल कर लेंगे। असल में ये कहीं आसमान से ये फैसला नहीं होना, ये पाकिस्तान के अवाम ने करना है। तो पाकिस्तान के अवाम जितना इस्लाम का शऊर रखते होंगे, उतना ही उनके समाज में और उनकी सियासत में इस्लाम का इजहार हो जाएगा। ये कोई मसनूई अमल नहीं हो सकता।
गांधी साहब, आपने बात की वफाकी शरई अदालत की, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। अभी एक बड़ा अहम मसला सामने आया है कि औरत पे जो है वो हल्का फुल्का तशद्दुद किया जा सकता है, क्या आप समझते हैं कि इसकी गुंजाइश इस्लाम के अंदर मौजूद है?
ये मेरे नज़दीक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जुरिसडिक्शन का मसला ही नहीं है। देखिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसलिए कायम की गई थी कि वो रियासत को मशवरा देगी, यानी अगर कोई कानून शरीयत के मुताबिक नहीं है तो बताएगी उसमें क्या गलती है, और अगर कहीं कानून साजी की ज़रूरत है और उससे पार्लियामेंट पूछेगी या सरबराए मुमलकत पूछेगा तो मशवरा देगी। चुनाचे उसका दायरा वो कवानीन है जो स्टेट की सतह पर बनाए जाते हैं। ये बात कि घरों में क्या होना है क्या नहीं होना, इसमें किसी को कुछ कहना है तो वो आलिम होने की हैसियत से कहे, यानी मिंबर पर कहे, अपनी तालीम गाहों में कहे, लोगों को बताए। चुनाचे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको ये बताऊंगा कि इस मामले में कुरान क्या कहता है, वो हम बताएंगे। लेकिन इसमें रियासत के नज़म को मुदाखलत नहीं करनी। रियासत की जुरिसडिक्शन ये है कि जब कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई छोटा उसके पास ये शिकायत लेकर आ जाए कि उस पर तशद्दुद हुआ है, तो वो उसकी आवाज़ सुने, उसको इंसाफ फराहम करे, और अगर किसी ने उसके खिलाफ हुदूद से तजावुज़ करके कोई तशद्दुद किया है तो उसके लिए कानून साजी करे। ये रियासत की जुरिसडिक्शन है, उसका काम लोगों को तशद्दुद करने की इजाज़त देना नहीं है। तो इसलिए यहाँ हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के लोगों ने ना सिर्फ ये कि हुदूद से तजावुज़ किया, बल्कि बाज़ ऐसी बातें भी कहीं जो सिरे से उनके कहने की नहीं थी। मिसाल के तौर पर यह कि ख्वातीन बाहर जाएँ तो किस तरह जाएँ, वो अगर सरकारी मुलाजिम है तो दौरों पर जाएँ तो वहाँ पर महरम को साथ लेके जाएँ। ये तमाम तर शख्सी मामलात हैं। रियासत की जुरिसडिक्शन सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि किसी की हक तलफी हुई है तो हम कानून बनाएंगे उसको रोकने के लिए, या किसी के जान माल आबरू के खिलाफ कोई ज्यादती का अंदेशा है तो हम वहाँ कानून बनाएंगे। इसके आगे रियासत कोई कानून साजी सिरे से कर ही नहीं सकती।
अगर गांधी साहब, औरत के तशद्दुद की अगर बात की जाए तो इसके कुरानी अहकामात क्या हैं? अगर औरत पे तशद्दुद क्या जायज़ है, नाजायज़ है, और वो तशद्दुद किस अंदाज से होगा, कितना तशद्दुद होगा?
देखिए, तशद्दुद का तो कोई सवाल ही नहीं है। कुरान मजीद जो बात कह रहा है वो ये है कि बगावत या रिबेलियस एटीट्यूड ये किसी नज़म में भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये वाज़े कर दिया है कि सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप नज़म के खिलाफ बगावत का रवैया इख्तियार कर ले। बगावत और सरकशी इस्लामी शरीयत में अल्लाह ताला के नज़दीक एक बड़ा जुर्म और बड़ा गुनाह है। ये रियासत के खिलाफ की जाए तो इसकी सजाएं सूरह मायदा में बयान हुई हैं और बड़ी सख्त हुई हैं। औलाद वालदैन के खिलाफ बगावत का इर्तकाब करे तो ये भी इंतहाई संगीन जुर्म है। यही सूरत हाल ये बीवी की है। जो घर का नज़म कायम किया गया है उसमें शौहर की हैसियत सरबराह की है और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि शौहर के मुकाबले में बीवी को, इसका ताल्लुक औरत और मर्द से नहीं है।
गांधी साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गांधी साहब से मजीद पूछेंगे कि जो दीनी मामलात हैं उन पर उनकी क्या राय है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गांधी साहब, जो कि मलेशिया से स्काइप जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद गांधी साहब, इस्लामी हुकूमत की बात हो रही थी, रियासत की बात हो रही है और खिलाफत की बात हो रही है। आजकल भी देखने में आया कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में, इसके खिलाफ इसको हटाने की बातें की जा रही हैं और मजहबी शख्सियत डॉक्टर तैयब कादरी साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो आएंगे, धरना देंगे और इस हुकूमत को हटा देंगे। ये जो हुकूमत हटाने की कोशिशें होती हैं, क्या इसको जायज़ समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं?
मेरे नज़दीक हमारे मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम कायम है। एक हकूमत का इंतखाब हम 5 साल के लिए करते हैं। आईन के मुताबिक जब वक्त आएगा तो हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी सियासी जमात बनाए, मैदान में उतरे, राय आम्मा को कायल करे। अगर लोग उस पर एतमाद करते हैं तो ये हकूमत खुद ही चली जाएगी। इसके लिए कोई हंगामा करने, एहतजाज करने और धरने देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो महज इंतशार है और अल्लाह ताला के दीन में इसको सख्त नापसंद किया गया है। मैंने अभी आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज़ किया है कि बगावत और सरकशी का रवैया इस्लामी शरीयत में संगीन जराइम में से, ये ना घर में गवारा की जा सकती है ना शहरी ज़िंदगी में गवारा की जा सकती है। जमहूरियत का तरीका हमने इख्तियार कर लिया है। लोग हैं, उनको फैसला करना है, जिसने जाना है उनके पास चला जाए और उसका वक्त आ रहा है और 1.5-2 साल के बाद।
लेकिन गांधी साहब, जो हुकूमत के खिलाफ बात की जाती है, जैसे कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ करप्शन के इल्जाम हैं, पनामा लीक्स में उनके नाम आ गए हैं, इसलिए इस हुकूमत को हटाया जाना जरूरी है। इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत को हटाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, ये किस हद तक जायज है?
इसके मानी इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम अपने निजाम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। एक जमहूरी माशरे में हकूमत को हटाने का तरीका तय कर दिया जाता है और ये तरीका इंसान ने सदियों के तामुल के बाद सीखा है। यानी इससे पहले भी हकूमतें इसी तरीके से बगावत करके हटाई जाती थीं। उसमें खून बहता है, इंसानी जानों का नुकसान होता है, मईशत बर्बाद होती है। एक तरीका हमने तय कर लिया है और वो तरीका हमारे मीसाक मिल्ली, हमारे आईन में तय है। आप अपना मुकदमा लेके लोगों के पास जाइए। एक जमहूरी माशरे में दो ही तरीके हैं जिनसे आप एहतसाब करते हैं, यानी इंतखाब के मौके पर अपना मुकदमा आवाम के पास लेके जाइए, दलाइल के साथ लोगों को कायल कीजिए, वो एहतसाब कर लेंगे और फिर अदालतें मौजूद हैं। अगर आप दरमियान में कोई मामला करना चाहते हैं और आपके पास किसी चीज़ के सबूत हैं तो अदालत के सामने जाके पेश कर दीजिए। इस वक्त भी पाकिस्तान में वो कानून मौजूद है जिनके तहत अगर आप अदालत पर जाके मुकदमा साबित कर देंगे तो आपका एहतसाब हो जाएगा। तो
मेरे हुक्मरान अवाम की बात ना माने, अवाम जो डिमांड कर रही है, अवाम का मुतालबा ना माना जाए तो हुक्मरान, तो फिर हुक्मरानों के खिलाफ फिर भी कोई ऐसा एहतजाज नहीं हो सकता जिसके नतीजे में हुकूमत हटाई जाए?
देखिए, आप राय आम्मा को हमवार करेंगे और वक्त का इंतजार करेंगे। यानी राय आम्मा को हमवार करने का आपको हर मौके पर हक है। ये 5 साल इसीलिए दिए जाते हैं। आप गाँव में जाइए, आप देहात में जाइए, आप इज्तिमात कीजिए, पुरमन तरीके से हुक्मरानों के खिलाफ अपनी चार्जशीट पेश कीजिए, लोगों को अपनी राय का कायल कीजिए और सब्र के साथ उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जबकि इंतखाबात का मौका आएगा। उस वक्त ये मालूम हो जाएगा कि लोगों ने आपकी बात मानी है या नहीं मानी। उससे पहले इंतशार पैदा करने के क्या मानी है? ये कौम के साथ भी दुश्मनी और मुल्क के साथ।
मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसको आप इस्लामी पार्लिमानी निज़ाम समझते हैं, इस्लामी जमहूरी समझते हैं?
इस्लाम में तो बस ये उसूल बता दिया गया है कि लोगों की राय से हुकूमत कायम होगी, लोगों की राय की ताईद पर कायम रहेगी, उससे महरूम होकर ख़त्म हो जाएगी। इस उसूल को रूबा अमल करने के लिए आप पार्लिमानी तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, सदारती तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। तरीके कार से इस्लाम को कोई बहस नहीं है, वो सिर्फ इस उसूल को कायम करता है कि हुकूमत ना धरनों से ख़त्म की जा सकती है, ना किसी तबके के वर्डिक्ट और फतवे से ख़त्म की जा सकती है, ना बंदूक से ख़त्म की जा सकती है। उसके इनेकाद का हक भी अवाम को है और उसको ख़त्म भी वही कर सकते हैं।
तो इस सूरत में गांधी साहब जो मार्शला लगाए जाते हैं या फौज के जरिए हुकूमत हटाई जाती है, उसकी क्या हैसियत होगी?
वो सरी बगावत है और मेरे नज़दीक कबीरा गुना का इर्तकाब है, क्योंकि आप मार्शल्ला नहीं लगा सकते जब तक कि आप उस मिसाक मिल्ली को नहीं तोड़ देंगे जिसको हम आईन कहते हैं। आईन एक मुकद्दस दस्तावेज है और हमारे दीन में ये उसूल कायम किया गया है कि जब कोई माहदा हो जाए तो उसकी लेटर और स्पिरिट में लफ्ज और मानी दोनों के एतबार से पाबंदी ज़रूरी है। तो बंदूक का यह हक किसी तरह भी नहीं माना जा सकता कि वो इस आईन को तोड़े या इसकी खिलाफ वर्जी करे। हमारी अफवाज का काम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है और जिस हुकूमत का लोग इंतखाब करें उसके अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करना है। इसके आगे किसी किस्म का भी कोई किरदार अगर वो अदा करती है तो ये आईन के भी खिलाफ है और ये इस्लाम के भी खिलाफ।
तो गांधी साहब, जो हुकूमत के क्याम की अगर बात की जाए तो क्या किसी शख्स को इस ख्वाहिश का इजहार कर सकता है कि वो MNA बनना चाहता है, वो वजीर आजम बनना चाहता है, वो सदर बनना चाहता है? अगर वो ख्वाहिश का इजहार करेगा तो क्या ये इस्लामी होगी?
इसमें इस्लाम किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम में जो बात कही है या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो ये है कि आदमी को इक्तदार का हरीस नहीं होना चाहिए। अपने आप को किसी खिदमत के लिए पेश करना ये बिल्कुल जायज़ है। आपकी सारी सिविल सर्विस के लिए लोग इसी बुनियाद पर अपने आप को पेश करते हैं, अफवाज पाकिस्तान में इसी बुनियाद पर पेश करते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया कि मुझे आप इजअलनी अला खजाइन लर्ज, ये उनका जुमला कुरान में नकल हुआ है। उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया कि मैं इस वक्त हुकूमत की कुछ खिदमत अंजाम दे सकता हूँ, लिहाजा बादशाह अगर मुझे जिम्मेदारी दे दें तो ये बहुत बेहतर होगा। तो इस वजह से इसमें कोई हरज की बात नहीं।
तो गांधी साहब, अगर हुकूमत जो है, अभी रमजान का महीना है, ज़कात पे एक बड़ी बहस जारी है कि ज़कात स्टेट नहीं काट सकती। मुफ्ती नईम साहब ने एक फतवा भी दिया कि ज़कात जिनकी काटी गई है बगैर उनके बताए वो दोबारा से ज़कात भी दें। तो क्या अगर रियासत ज़कात काट ले, बैंक ज़कात काट लें, तो बंदे को दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी या वो ज़कात उसकी हो जाएगी?
मैं मुफ्ती नईम साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन उसी एहतराम के साथ ही पूछने की जसारत करता हूं कि फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया था? ज़कात हुकूमत का हक है, ज़कात अगर हुकूमत लेगी तो किसी को इनकार करने का हक नहीं है। ज़कात के मामले में कोई फ़र्द ज़ाती इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। आप ये जानते हैं कि हमारी तारीख में जो सबसे बड़ा इकदाम रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किया गया वो मानईन ज़कात के खिलाफ कार्रवाई का इकदाम था। तो इस वजह से ये बात तो किसी तरह भी समझ में नहीं आती। ज़कात हर हाल में हुकूमत को लेनी है, उसे लेनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ज़कात वसूल करे और लोगों का फ़र्ज है कि वो उसको अदा करें।
लेकिन जो लोग बैंक में से अपने पैसे निकलवा लेते हैं या एफिडेविट लिख के दे देते हैं कि वो ज़कात नहीं देना चाहते, अपनी मर्जी से ज़कात देंगे, जिनको जानते हैं उनको ज़कात देंगे, तो क्या ये दुरुस्त है?
वो इस्लामी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, यानी हुकूमत भी इस्लामी कानून की खिलाफवर्जी कर रही है, इसलिए कि वो ज़कात जिस तरह लेनी चाहिए उस तरह लेती नहीं है। वो ज़कात के अलावा बहुत से टैक्स लगाए हुए हैं, जबकि कुरान मजीद ये कहता है कि मुसलमानों की हुकूमत को ज़कात के अलावा कोई टैक्स लेने का हक नहीं है। तो हुकूमत भी बहुत से मामलात में इस्लामी उसूलों की खिलाफवर्जी कर रही है और हमारे अवाम भी खिलाफवर्जी करते हैं, लेकिन उसूल के लिहाज से मसला ये है कि ज़कात दर हकीकत हकूमती का हक करार दी गई है। हकूमत नहीं लेगी तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको अपने ज़ाती हैसियत से भी अदा करें, यानी हुकूमत ले तो फिर वही लेगी।
जी गांधी साहब, कैसा मुमकिन है कि जो ज़कात से रकम इकट्ठी की जाए उससे रियासत, जो उसके खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, उसे रियासत चल सके? अगर उसे रियासत ना चल सके तो मजीद टैक्स तो लगाने जरूरी हो जाएंगे स्टेट के लिए।
आप तन्हा इसी वक्त कोई प्रोग्राम करें तो मैं आपको बताऊं कि ज़कात का कानून क्या है। आप हैरान होंगे कि उसके नतीजे में आप सोच भी नहीं सकते कि जितना सरमाया इकट्ठा हो जाएगा। हमारे यहाँ ज़कात के कानून को भी बिल्कुल गलत समझा गया है और उसके नतीजे में लोगों को ये इश्काल पैदा होता है। ज़कात को आप समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये खुदा ने इंसानियत पर कितना बड़ा करम किया है, इससे मईशत पर कितने गैर मामूली असरात होते हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पूरी मईशत को आलमी सतह पर आपने ये पैगाम दे दिया कि ये खुदा का हक है, जो रियासत लेगी इससे जायद कुछ नहीं ले सकती, इससे जो माशी इस्तेहकाम पैदा होगा वो अलग। इसके नतीजे में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर ज़कात देने वालों की एक बड़ी तादाद वजूद में आएगी। और इसमें सिर्फ कानून अपना काम नहीं करेगा, इस कायनात के परवरदिगार का ईमान भी अपना काम करेगा।
गांधी साहब, अगर रोजे की बात की जाए तो रोजा जो है वो क्या फर्द का इंफरादी मामला है कि या रियासत जो है रोजा खोर के खिलाफ कार्रवाई करेगी? और जो पब्लिक प्लेसेस पे बात की जाती है कि होटल्स बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी खुली जगह पे कुछ चीज खाने की इजाजत नहीं है, क्या यह रियासत का काम है?
यह रियासत का काम नहीं है। रोजा एक इंफरादी इबादत है, इस पर रियासत को कोई मुदाखलत का हक नहीं है। वो वही कर सकती है जो मैं आप करते हैं कि तलकीन करे, नसीहत करे, अच्छी रवायात कायम करे, लेकिन इसके लिए कानून की बुनियाद पर कोई इकदाम नहीं किया जा सकता। देखिए मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि सिर्फ चार चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जो इस्लामी शरीयत में रियासत से मुतल्लक है। एक जंग या कताल, जिसको हम जिहाद भी कहते हैं। दूसरे चंद जरायम की सजाएँ जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं, जिन्हें हुदूद कहा जाता है। तीसरे ज़कात, जो हुकूमत का हक है कि वो लेगी। और चौथे जुमे का मेंबर, उसका खुतबा और जुमे का एहतमाम। ये चार चीज़ें हैं जो इस्लामी शरीयत में रियासत से मुतल्लक हैं। बाकी तमाम उमूर शख्सी उमूर हैं, उनमें रियासत को मुदाखलत का कोई हक नहीं।
ठीक है गांधी साहब, फिर अकीम उस्सलाह का जो तसव्वुर है कि नमाज कायम करने का, तो वो तसव्वुर कहाँ रह जाएगा?
नमाज मुझे कायम करनी है, आपको कायम करनी है, हुक्मरानों को कायम करनी है, नमाज के लिए सहूलतें फराहम करनी है, उसका एहतमाम करना है। और जुमे के मामले में तो तय कर दिया गया है कि उसका एहतमाम भी हुकूमत करेगी, जामे मस्जिद भी उसी के एहतमाम में होगी, और उसके मेंबर पर आकर खुतबा भी हुक्मरान ही देगा या उसका कोई नुमाइंदा। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए से नमाज की फ़ज़ा कायम की जाती है। उसके लिए आप घरों में लोगों के दाखिल होकर लोगों को नमाज नहीं पढ़वाएंगे।
लेकिन जो जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई सजा तजवीज़ की जाएगी?
जुमे की नमाज हुक्मरान को पढ़ानी है, खुतबा देना है, एहतमाम करना है।
गांधी साहब, एक और ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजाहब में जो मुख्तलिफ मौजूदात पे जो बहस मुबहसे के दौरान शिद्दत पसंदी आ जाती है, उसकी वजह क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गांधी साहब, जो कि मलेशिया से स्काई पे हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद गांधी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था आपसे कि शिदत पसंदी जो हमारे यहाँ आई है, आप भी पाकिस्तान से मलेशिया शिफ्ट हो गए, वजूहात क्या है? क्या हम इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे?
बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी मजहबी तालीम में इस शिदत पसंदी के जरासीम मौजूद हैं और वो वक्तन फ़ौक्तन नमूदार होके ये मुसीबत पैदा कर देते हैं। इसमें लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है कि उनको ये हक है कि वो जो नुक्ता नज़र चाहे इख्तियार करें, जो मज़हब की ताबीर अपने लिए मौजू समझते हों उसको इख्तियार करें।
लेकिन गांधी साहब, एक तबका ये भी कहता है कि जावेद गांधी साहब ने एक नया दीन उसका आगाज़ कर दिया और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ हैं, गांधी साहब उसके लिए तावीलें पेश करते हैं, उसके लिए तौजीह पेश करते हैं।
लोगों ने बहुत सा नया दीन बना रखा था, मैंने उनकी बातों का इनकार करके असल दीन का चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस वजह से उनको ये कहने का हक है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके लिए कुरान मजीद से, पैगम्बर के इरशादात से दलील देता हूँ। उनके पास अगर इसके खिलाफ कोई इस्तदलाल हो तो ज़रूर पेश करें और फिर लोगों को फैसला कर लेंगे।
बाज़ लोगों की एक राय यह भी सामने आती है कि गांधी साहब हदीस को हुज्जत नहीं समझते, क्या ये दुरुस्त है?
मैंने इस्लाम पर जो किताब लिखी है उसमें पूरे दीन को बयान किया है, वो मीज़ान के नाम से 2007 से छपी हुई मौजूद है। उसमें आप पहले दो सफ़े निकाल के पढ़ लीजिए मैंने उसमें ये बयान किया कि दीन तनहा, दीन का तनहा माखज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ात वाला सिफात है। आप अपने कौल फेल तकरीर तस्वीब से जिस चीज़ को दीन करार दें वही दीन है। मेरे नज़दीक अगर कोई बात रसूलुल्लाह सल्लम की नस्बत से साबित हो और मैं उसका इनकार कर दूं तो मैं तो मुसलमान ही नहीं रहता। तो इस वजह से ये सरी झूठ, सफ़ेद झूठ और महज बहतान है, इसके सिवा इसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी किताब मीज़ान में मैंने जिन रवायतों को बयान किया है 1200 से ज़्यादा उनकी तादाद।
गांधी साहब, पिछले दिनों एक वीडियो आपके सामने आई मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, इस पर बड़ी बहस मुबहसा भी जारी है कि औरत और मर्द हाथ मिला सकते हैं, जिस पर बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि गांधी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था।
इसमें भी वही है कि पूरी बात सुने बगैर ये तबसरा किया गया है। मैंने ये अर्ज किया था कि हमारी ये रिवायत कि हम औरतों के साथ मुसाफा नहीं करते, ये बहुत अच्छी रवायत है। हमारे दीन में एक फासला कायम किया गया है, ये फासला कायम रहे और इसको कायम रखने की जद्दोजहद की जाए तो इस पर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नहीं, बल्कि इसको पसंदीदा समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई खातून हाथ बढ़ा दे और कहे कि मैं मुसाफा करना चाहती हूँ तो ये कोई हराम नहीं है, यानी आप मुसाफा कर सकते हैं, ये बात मैंने कही थी। और इसके ज़िमन में जो दलाइल दिए जाते हैं उनकी गलती वाजे कर दी थी। तो मेरी बात, पूरी बात ये है कि हमारे माशरे की ये रवायत बहुत अच्छी रवायत है, लेकिन ये कोई हराम का मसला या हलाल का मसला नहीं है। इस मामले में आदाब की नौइयत की एक चीज़ है जिसको मलहूज रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो इससे कोई क़यामत नहीं आ जाती।
लेकिन गांधी साहब, जब औरत से कहा गया कि जब वो बात करे तो तब भी उसका लहजा सख्त हो, नरम लहजे में बात ना करे, तो हाथ मिलाना या मखलूत महफिलें, क्या इससे खराबी पैदा नहीं होगी?
ये बात कहाँ कही गई है? जो बात कही गई वो ये थी कि रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिराने को मुनाफिकीन ने स्कैंडलों का हदफ बनाने का फैसला कर लिया। वो आते थे और आकर तरह तरह के मसाइल पैदा करते थे। तो अजवाजे मुताहरात से ये कहा गया कि अब आप घरों में रहेंगी और अगर इनमें से कोई आदमी इस नौइयत का अपने जहन में पैगाम लेके आता है तो उसके साथ बस कायदे की बात है वो की जाए, इसलिए कि ये लोग इस बात पर तुले हुए हैं कि ये पैगंबर को अजियत देंगे और स्कैंडल बनाएंगे। इसका किसी आम कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वातीन ने अब बातें करनी है, तिब्बी खिदमात अंजाम देनी है, लेक्चर देने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, तो पहले देखना तो चाहिए कोई बात कहाँ कही गई है और किस सियाक में कही गई।
लेकिन गांधी साहब, जो इस किस्म के आज रमजान मुबारक में भी हमारी नशरियात होती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, मखलूत महफिलें होती हैं और ख़ासतौर पर रमज़ान के मुकदस महीने में जिस अंदाज से गेम शो किए जाते हैं नशरियात के दौरान, क्या समझते हैं कि रमज़ान के महीने में इस किस्म की नशरियात होनी चाहिए?
नहीं, मैं इसका सख्त खिलाफ़ हूँ। मेरे नज़दीक रमज़ान के महीने में हमारा रवैया खलवत पसंदी का होना चाहिए। हम दीन की तालीम शाइस्ता तरीके से दें। ये जो रमज़ान को एक दुकान बनाने का तरीका है, ये रमज़ान की रूह के भी ख़िलाफ़ है, ये रोज़े की इबादत के तकद्दस के भी ख़िलाफ़ है। अब तो बदकिस्मती ये है कि हमने एतकाफ़ को भी एक मीना बाजार बना के रख दिया है। तो रमज़ान का महीना खलवत का महीना है, संजीदगी इख्तियार करने का महीना है। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई मजलिस भी मुनक़िद करनी है तो वो बहुत तहजीब के साथ दीन को सीखने की मजलिस हो, ये कोई जश्न मनाने का महीना नहीं।
जी जी, और नमाज तरावी के बारे में आप क्या कहते हैं कि इसका बाकायदा एहतमाम जो किया जाता है, बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि बाकायदा एहतमाम के साथ तरावी इस्लाम में मौजूद नहीं है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इसको बाकायदा राइज कर दिया, तो आप इस पर क्या कहेंगे?
दोनों बातें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। देखिए, तरावी कोई अलग नमाज नहीं है, ये तहज्जुद की नमाज है। रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम लोग तहज्जुद के वक्त उठने में दिक्कत महसूस करते हैं तो क्या तहज्जुद की नमाज इशा के बाद पढ़ी जा सकती है? आपने इजाज़त दे दी। तो लोग रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इजाज़त के मुताबिक इशा के बाद तहज्जुद पढ़ते हैं। ये नमाज लोग इनफरादी तौर पर भी पढ़ते थे, मस्जिद में भी आके पढ़ते थे, और मस्जिद में आके बाज़ औक़ात दो दो तीन तीन जमातें भी करा लेते थे, क्योंकि हर आदमी को ज़्यादा कुरान याद नहीं होता। सैयदना उमर ने कोई चीज़ राइज नहीं की, वो तशरीफ़ लाए मस्जिद के बाहर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मस्जिद ही में पढ़नी है तो एक इमाम मुकर्रर कर लो, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ना वो खुद शरीक हुए, ना वो इसमें कोई एहतमाम करके इसको जारी करने के को मुजरिम है। उन्होंने जो काम किया वो बस सवाए इसके कुछ भी नहीं।
तो गांधी साहब, बाज औरतें भी इन दिनों में रमजान के महीने में इमामत करवा के नमाज पढ़ाती हैं, तरावी की नमाज शुरू करा देती हैं, आप उस पर क्या कहेंगे?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की नफल नमाज में जमात की इजाजत दी है, यानी ये जो तहज्जुद की नमाज है इसकी खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में जमात की रवायत भी कायम हो गई थी। आपने ये रवायतों में बयान हुआ है कि 3 दिन अपने एतकाफ की जगह से बाहर निकलकर नमाज पढ़ी तो लोगों ने आपके पीछे पढ़ी, और आपने हरगिज ये नहीं कहा कि तुम जमात से नहीं पढ़ सकते। तो ये जमात जिस तरह मर्द करा सकते हैं उसी तरह औरतों की जमात औरतें भी करा सकते हैं।
लेकिन क्या फर्ज नमाज भी या जुमे की नमाज भी औरत करा सकती है?
देखिए, औरतें इमामत कराती रही हैं, खुद रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया उम्मे वरका रजी अल्लाह अन्हा को मदीना में इमामत के लिए मुकरर किया था, और रिवायतों में बयान हुआ है कि उनका मौज़िन एक मर्द को मुकरर किया था। ये वही खातून है जिनको सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हों ने बाद के ज़मानों में बाजार की कुछ खिदमत भी अंजाम देने के लिए एक जिम्मेदारी दी थी। तो इस वजह से ये आम रवायत इसकी नहीं रही, लेकिन सहाबाए किराम के ज़माने में ये सब कुछ मौजूद है। आपके इलम में है कि बहुत गैर मामूली हैसियत के आलिम और मुहक्किक डॉक्टर हमीदुल्ला साहब जब खुतबात बहावलपुर के लिए आए और उन्होंने ये वाक्या बयान किया तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, दरअसल हालांकि ये हदीस की किताबों में मौजूद है।
लेकिन क्या औरत अगर इमामत करवाएगी तो उसके पीछे जो मुक्तदी होंगे वो मर्द भी हो सकते हैं?
ये हमारी रिवायत नहीं है, यानी आम तौर पर मुसलमानों के यहाँ जो रवायत कायम हुई वो यही है कि मर्द इमामत कराते हैं और ख्वातीन उसमें शरीक हो जाती हैं, जैसे हरम में भी होता है, मस्जिद नबी में भी होता है। मेरा ख्याल है कि ख्वातीन के एहतराम के पेश नज़र यही रवायत जो हमारे यहाँ कायम है इसी को कायम रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या ये कोई नाजायज़ जायज़ का मामला है तो ऐसा नहीं।
तो औरत के उम्र या हज के हवाले से जो बयान किया जाता है कि उस जमाने में महरम की जरूरत हर हाल में थी, क्या आज भी वही जरूरत जो है महरम की मौजूद रहेगी अगर औरत कोई लाहौर से कराची से उम्र के लिए जाना चाहे तो?
ये जो बात रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, पहले तो ये समझ लीजिए वो बात क्या थी। आपके इलम में है कि उस जमाने में ख्वातीन काफिलों में सफर करती थी, मदीने से मक्का जाने के लिए और मक्का से मदीना जाने के लिए भी 6 दिन का सफर होता था। उसमें आपने ये फरमाया कि ख्वातीन अगर किसी मौके पर 3 दिन के सफर पर या 1 दिन के 24 घंटे के सफर पर निकले तो अपना कोई महरम साथ ले लिया करें ताकि उन्हें किसी तोहमत का निशाना ना बनना पड़े। ये ख्वातीन की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए एक तदबीर है जो अल्लाह के पैगंबर ने बताई।
लेकिन औरत के जो बाजार में जाने से मना किया गया था गांधी साहब, उस पर फिर आप क्या कहेंगे?
यानी इस बात को पसंद नहीं किया गया कि इस तरीके से ख्वातीन ऐसे मकामात पर जाएं जहां पर उनकी इज्जत इस्मत को खतरात लायक हो सकते हैं। आप उस कदीम तमद्दुन के बारे में थोड़ा सा मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहूद के बाजारों में कुछ ख्वातीन के साथ बदतमीजी की गई। तो ये असल में वक्ती तदाबीर होती हैं जो बाज़ मौक़ों पर पेश की जाती हैं, ये कोई अमूमी अहकाम नहीं होते। अमूमी अहकाम वही है जो कुरान मजीद में बयान हो गए हैं।
गांधी साहब, सुन्नत के हवाले से बात की जाती है, हजारों की तादाद में सुनते हैं, लेकिन आपके हवाले से कुछ बयान सामने आते हैं कि सुनते सिर्फ 27 आमाल का नाम है, इसकी क्या मंतक है?
मेरी किताब में उस हिस्से को कभी किसी ने पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की। मैंने अपनी किताब की इब्तदा में सुनन की फहरिस्त मरतब करके उनके उनवानात दिए हैं, उसके आगे एक एक उनवान का बाब है, उसमें सैकड़ों की तादाद में आगे सुनन बयान हुई है।
तो गांधी साहब, पाकिस्तान, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान से जाने की बुनियादी वजह क्या, आप क्यों शिफ्ट हो गए पाकिस्तान से?
मैं जिस जगह पर रहता था जब ये सूरत हाल बहुत ख़राब होना शुरू हुई तो मेरा एहसास था कि मेरे हमसाए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। आपके इलम में है कि ऐसी फ़ज़ा पैदा हो गई थी कि जब किसी को मारने का ये लोग फैसला करते थे तो तनहा उसी को हदफ नहीं बनाते थे, बाज़ औक़ात पूरी पूरी मस्जिद पर हमलावर हो जाते थे, घरों पर हो जाते थे। तो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि कुछ वक्त के लिए मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ।
बहुत शुक्रिया जावेद अहमद गांधी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, सवालात भी बहुत थे, मौजू भी बड़े तवील हो सकते थे और उनसे जवाबात भी लिए जा सकते थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नसरुल्लाह मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।